खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
मैं ये गाना इसीलिए लगाया था कि जो आज बाबा ने सुबह मुरली में कहा, तो आज की मुरली का भी मैसेज था, सदा मुस्कुराते रहिए। इसका अर्थ है कि जीवन में कोई भी सिचुएशंस आए, प्रॉब्लम आए, हमें अपनी खुशी को कम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने आज बताया था, खीरखंड होकर रहना है। खीरखंड होकर रहना है यानी जो भी हमारे आसपास सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स, सबके साथ संबंधों में मिठास रखनी है, हारमोनी रखनी है, तभी हम एज ए टीम सेंटर पर काम कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने जो मेथड हमें सिखाई है, इंडिविजुअल नहीं सिखाई है। ब्रह्मा कुमारीज एक नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज टीम है, और जिसकी टीम अच्छी होती वही मैच जीतता है। इसीलिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक गुरु होता है, बाकी सब चेले होते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ सभी कौन है, राजा हैं, किंग्स हैं, सभी लीडर्स हैं। तो सभी किंग्स को बाबा आकर पढ़ाता है, तो कभी कभी किंग्स एक साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो उसमें हमें घबराना नहीं है। अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा सत्युग से लेके कलयुग तक हमें मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो उससे घबराना नहीं है। हर सीन को पास ऑन करना है। एक ये शब्द बड़ा अच्छा एक कहानी में बताया गया कि पास ऑन, पास ऑन का अर्थ होता है हर चीज जो सामने आती है वो पास होती जाती है। एक राजा की कहानी थी कि राजा ने कहा, मुझे एक मेजर मैसेज पूरे शास्त्रों का बताओ। तो उसके मंत्रियों ने बहुत मेहनत की, 50-60 बुक्स इकट्ठी करके उसकी एक किताब बनाई, पर जब तक उसमें 10 साल लग गए थे। फिर वो जब लेके आए तो राजा बीमार होने लग गया, प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए, तो उन्होंने 10 एक किताब की और छोटी किताब करी। फिर ऐसे करते करते एक शब्द पर आए, जब राजा अपना शरीर छोड़ने वाला था तो उसने पूछा, कौन सा वो शब्द है? तो उन लोगों ने कहा, ये भी घड़ी पास हो जाएगी। तो यही हमें भी सीखना है कि जो ड्रामा में हमारे सामने सीन आया है, टेम्पररी आया है और वो जाने के लिए आया है। तो ये जब हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं तो काफी जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, हम सोचते हैं वो प्रॉब्लम है, वो ठीक होते जाते हैं। तो थोड़ा मैं साइकोलॉजी, थोड़ा मेडिकल नॉलेज और थोड़ा ज्ञान, तीनों को मिक्स करके आपको देते जाऊंगा। आप अपने लेवल पे अपनी चेकिंग करते जाना कि मेरे में निराशा तो नहीं है, मेरे में तनाव तो नहीं है, मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहां मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि एज ए यंग जब आप अपने घर छोड़कर एक नई लाइफ को जीने के लिए शुरू करते हैं, परमात्मा को जीवन समर्पित करते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे घर में रहता है उससे डिफरेंट ही हमें पर्सनालिटीज मिलती हैं। माता पिता, भाई बहन, हम सबको, एक दूसरे को हम जानते हैं, तो इसलिए वहां प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते हैं। वहां मदर फादर ओवरलुक करते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है। पर जब हम एक जिम्मेवारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और सेंटर पे कार्य करते हैं, तो सेंटर पे सीनियर्स रहते हैं, जूनियर्स रहते हैं, यज्ञ की संभाल रहती है, स्टूडेंट रहते हैं, तो सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें आगे बढ़ना हैगा। इसमें मेजर एक प्रॉब्लम आता है, हमारे जो टैलेंट्स हैं एज ए यंग, वो टैलेंट्स अगर हमारे यूटिलाइज नहीं होते हैं प्रॉपरली, तो तब पहले लेवल पे डिप्रेशन चालू होता है, क्योंकि हर आत्मा एक अपनी टैलेंट को लेकर यज्ञ में आती है। अगर वो टैलेंट हमारे यूटिलाइज नहीं हुए ठीक से, अगर हमें चांस नहीं मिला उनका, तो क्या होगा, हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि सबसे बड़ी जो इमोशन, सबसे बड़ी भावना जो हर व्यक्ति को चाहिए रहती है, वो होता है एक्सप्रेशन, और दूसरा रहता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और दूसरा हुआ हमारा एक्सप्रेशन। अगर हमें जीवन में सिक्योरिटी ठीक मिलती है, सुरक्षा मिलती है, अपने आप से हम सुरक्षित रहते हैं, और दूसरा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो ज्यादातर उस व्यक्ति को कोई भी निराशा चिंता नहीं आती है। पर ये दो लेवल अगर डिस्टर्ब होती है, असुरक्षा फील होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, तो तब निराशा और दूसरी चीजें आती है। तो इस लेवल पर हम यंग लेवल पर कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील करें, और हम सभी जानते हैं कि ये सिचुएशंस हर एक के सामने आती है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम समर्पित हैं, हम मधुबन में रहते हैं या घर ग्रस्त में रहते हैं, हर एक को अपने अपने लेवल पर प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम्स का आना ही जिंदगी है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आए तो फिर जिंदगी एक बोरिंग हो जाती है। अगर मैच ही नहीं हो तो हमारा टेस्ट पेपर ही नहीं हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने क्या मेथड डिवाइस की है, टेस्ट पेपर देता है, एग्जामिनेशन पेपर लेता है और देखता जाता है कि आप इस पेपर में पास होते हैं कि नहीं होते। जनरली ये देखा गया कि हमारा पेपर उस रूप में आता है जिसमें हम कमजोर हैं, और ये देखा गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक वस्तु में, एक विकार में कमजोर रहता है, परसेंटेज 100% रिमूव नहीं कर पाता। तो माया वहीं से पेपर लेने आती है, वहीं से आएगी। जब तक मैंने उस सीन को खत्म नहीं कर दिया, वो सीन बार बार आपके सामने आएगा। जैसे कई बार होता है कि हम सेंटर चेंज कर लें तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी, तो एक सेंटर से गए, दूसरे सेंटर गए, वहां भी वही प्रॉब्लम, फिर थर्ड सेंटर गए, तो कहां प्रॉब्लम है, हम चेंज करते जा रहे हैं पर प्रॉब्लम कहां है। खुद में एडजस्टमेंट का जो नेचर है, एडॉप्शन का, वो अगर कमजोर रहता है तो फिर क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते जाते हैं। कई बार ये सक्सेसफुल होता है पर कई बार अनसक्सेसफुल भी होता है। तो मेन चीज हमें क्या चाहिए, अपने खुद की शक्ति को बढ़ाना है, खुद में इतना पावर बढ़ाना है कि जो किसी भी सिचुएशन में मैं रह सकूं। क्योंकि परमात्मा ने हमें जहां भेजा है, जिधर भेजा है, जिस शहर में भेजा है, जिस शरीर में भेजा है, मेल है कि फीमेल है, जो भी दिया है वो बहुत क्या दिया है, अच्छा दिया है, सिलेक्टेड दिया है। अगर हम उससे लड़ते रहते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो पहली चीज ही, चाहे परमात्मा का ज्ञान लें चाहे साइकोलॉजी लें, पहली चीज ही ये सिखाई जाती है, अपने आप पर विश्वास, अपने आप को एक्सेप्ट करना। तो मैं यही पॉइंट लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये लेक्चर्स तो बहुत लंबे हैं, पर ये मेन मेजर पॉइंट, इसी को मैं इनलार्ज करूंगा, बढ़ाऊंगा। इसमें दिखाया, आज हमारे जो आदरणीय प्रेसिडेंट एंड रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम, उनके जीवन की भी कहानी देखें। एक सिंपल रामेश्वरम में बोटमैन के यहां, नाविक के यहां पैदा हुए और जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने भी कई किताबें लिखी। एक बहुत अच्छी किताब जो उन्होंने लिखी, इग्नाइटेड माइंड, उसमें जो उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा रिसोर्स मनुष्य का उसका खुद का माइंड है। इग्नाइटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। इग्नाइटेड माइंड यानी जो हमारा मन है, आत्मा है, अगर वो उसमें ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, लाइट आ जाती है, वो सबसे बड़ा हमारी धरोहर है, शक्ति है। अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हम वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन का सामना हम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने भी जो मेथड सिखाई है वो यही सिखाई है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर उसको बढ़ाते जाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो थाइसेल्फ, आप अपने को पहचानिए। ये टोटल साइकोलॉजी का जो गेम चलता है वो यहीं से चलता है कि जो व्यक्ति अपने को ठीक रीति से पहचानता है, समझता है, पार्ट को जानता है, वो व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल होता है। तो मिस्टर अब्दुल कलाम भी एक सिंपल व्यक्ति थे, पर अपनी अंदर की क्षमताओं को कभी कवर नहीं किया, उसको खोलते गए और सक्सेसफुल बन गए। एक बहुत अच्छे फिलोसोफर जो ग्रीक का था, उसने ये कहा था जो आज के समय में भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। आप अभी यंग स्टेज पर हैं, अगर आप सेंटर इंचार्ज हैं तो ये आप अपने ऊपर भी लागू करके देखना कि जीवन में जो भी दुख खुशी गायब होती है वो कहां से गायब होती है? जब हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसको कंट्रोल करते करते हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, और जब डर पैदा होता है तो इसका असर हमारे शरीर के ऊपर भी चालू हो जाता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है उसका डर, फियर। सबसे ज्यादा एनर्जी जो खाता है शरीर की, आत्मा की, वो है उसका डर। एक बार व्यक्ति को डर बैठ जाता है तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और उसको लाइफ में अनसक्सेसफुल बना देता है। तो खुशी कहां से गायब होती है? जब हम क्या करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आजकल जैसे बाहर वालों का मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, जितने भी इंडियंस प्रॉब्लम अभी हो रहे हैं, करप्शन के दूसरे प्रॉब्लम, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको फियर ऑफ फ्यूचर है। वो फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर मेरे हाथ में रहे, तो इसीलिए इतना पैसा इकट्ठा करते रहते होंगे और उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आते हैं। और जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं है। परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल है? अभी हम कहें कि अभी पानी आ जाए, अभी ठंड चालू हो जाए, इस सेकंड, ये सेकंड हमारे हाथ में है, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर सेकंड हम नोन से अननोन में जा रहे हैं। हर सेकंड हम नोन का अर्थ है कि जो हम जानते हैं अभी, और आगे क्या होगा किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए बाबा ने भी कहा कि मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि कब विनाश होगा। लास्ट ईयर की मुरली में बाबा ने कहा कि मैं एक घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा। बाबा ने क्वेश्चन पेपर पहले बता दिए, पर कब होगा वो नहीं बताता है। पेपर कब आएगा वो नहीं बताता। ट्रेन में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं भी सडनली पेपर आ जाता है। पेपर एक सेकंड में आता है, और उस समय अगर हमारा रिएक्शन ठीक नहीं है, ट्रेन में जा रहे हैं और वहां हमारा किसी से मनमुटाव हो जाता है, आपस में ही बात कर रहे हैं तो दूसरे लोग देख रहे हैं, तो खट से वो जान जाएंगे कि ये भी सेम है हमारे जैसे। तो पेपर सडनली आते हैं, सर्विस और डिससर्विस हमारे हाथ में। इसीलिए जब कभी भी हम जाएं, कहीं भी जाएं, पहली चीज ये सोचें कि मैं यज्ञ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने जब बैच लगा लिया, ड्रेस पहन ली, इसका अर्थ है मैं नहीं हूं। अब मैंने अपनी जिंदगी परमात्मा को समर्पित कर दी। मेरा हर विचार एक्शन परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यज्ञ पहले, मैं बाद में। ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, मैं पहले, दूसरी चीजें बाद में। तो जब हम समर्पित हो जाते हैं, जो बाबा कहता है निमित्त और निर्माण, तो हम दूसरों को कंट्रोल ना करें, परिस्थिति को कंट्रोल ना करें, केवल अपने को ठीक रखें, अपने को मैनेज करें। इसीलिए विवेकानंद ने भी कहा था, डू नॉट कंट्रोल द लाइफ, बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड। यानी आप जिंदगी को कंट्रोल मत करो, आप अपने मन के राजा बन जाओ। अगर मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मेरी हमेशा मुट्ठी तनी हुई होगी और गर्दन अकड़ी हुई रहेगी। और जब गर्दन अकड़ी हुई होगी, ज्यादा मुट्ठी टाइट रहेगी, तो क्या होगा, बीमारियां चालू होगी। हर समय मैं स्टिफ हो गया। तो बॉडी कब स्टिफ होती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक शरीर का लचीलापन बना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अगर हम नेचर के बहुत टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो शरीर में भी उसका परिवर्तन आता है। इसीलिए हमें अपना नेचर बहुत कैसे बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक, स्टिक जैसा नहीं हो जाना चाहिए, छड़ी जैसा। छड़ी जैसा हो जाएंगे तो क्या होगा, शरीर के जितने ऑर्गन है वो भी स्टिफ हो जाएंगे। तो इसलिए बीच बीच में फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए और मेंटल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अभी आप लोग फिजिकल करो, क्योंकि आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं ना, तो ब्लड शुगर भी डाउन हो जाती है अभी 12 बजे के समय। ये सबसे डिफिकल्ट टाइम रहता है स्पीकर के लिए, लोगों को जगाकर काम कराए। तो आप लोग अभी, इसीलिए मुझे बोला गया डॉक्टर को कि आप लोगों को जगा कर रखना है। तो अभी जरा हाथ ऊपर करें सब, हाँ वेरी गुड, दोनों हाथ ऊपर करें, वेरी गुड, नीचे करें, गर्दन को पीछे करें, लेफ्ट राइट, हाथ को आगे करें, हाँ दोनों मुट्ठी दबाए, खोलें, अब सांस अंदर और बाहर, गुड वेरी गुड। चलो चेहरे पर मुस्कान तो आ गई, ब्लड शुगर इंप्रूव हो गई। तो हम दूसरों को न कंट्रोल करें, अपने को मेंटेन करें, और हमेशा अपना नेचर फ्लेक्सिबल बनाए, इलास्टिक बनाए, स्टिक जैसा न बनाए, तो तब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी चीज है, एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट ने लिखा था, जिंदा रहने का अर्थ ही है कुछ न कुछ प्रॉब्लम आना। पर उसने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस प्रॉब्लम में भी कुछ न कुछ मीनिंग निकालना, अर्थ निकालना। क्योंकि कहा गया है कि हर प्रॉब्लम कुछ न कुछ मीनिंग लेके आता है, मैसेज लेके आता है। तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो सोचो, इसमें क्या मीनिंग है, ये मेरे लिए क्यों आया है। तो जब हम मीनिंग निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहता, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो हर प्रॉब्लम में हम देखें मीनिंग निकालें। तो जैसे एक लेडी थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर, उसको जब वो घर आई, उसकी तीन लड़कियां थी। वो घर आके एक दिन बोलती है, मेरे डॉक्टर ने आज मुझे कहा कि मेरे को ब्लड कैंसर है, और मेरे डॉक्टर ने कहा कि एक साल से ज्यादा जिंदा मैं नहीं रहूंगी, पर तुम तीनों घबराओ मत, मैं जिंदा रहूंगी जब तक तुम तीनों की शादी हो ना जाए। और वही मदर 18 साल बाद अपनी सबसे छोटी लड़की की शादी अटेंड कर रही थी। डॉक्टर होने का एक साल ब्लड कैंसर में, पर वो कितना जिंदा रही उसके बाद भी, 18 साल बाद भी अपनी छोटी लड़की की शादी करा रही थी। उसने क्या किया, उसने उसमें भी एक जीवन का मीनिंग निकाल लिया कि मुझे जिंदा रहना है जब तक ये तीनों बाहर नहीं हो जाएं। तो पहला काम हमें अपने अंदर अपने इस जीवन के लिए मीनिंग निकालना है। मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ निकालना है। मुझे परमात्मा ने क्यों सिलेक्ट किया, मुझे परमात्मा ने क्यों इस यज्ञ में लाया, ये लिखो क्वेश्चन। और मुझे क्या करना है, Why I am here and what I have to do। मुझे परमात्मा ने, ये बंद कर दो, मुझे परमात्मा ने क्यों सिलेक्ट किया और मुझे क्या करना है। वो जो गाना है ना पहला वाला, हीरे जैसा जन्म मिला, अभी वो सुनना दो लाइन और फिर अपने अंदर चलाना, फिर दूसरा गाना बजाएंगे, मुझे क्यों, मुझ में क्या देखा, और लिखना आप आंसर अंदर कि मुझे परमात्मा ने क्यों चुना है और मुझे क्या करना है, दो क्वेश्चन। मुझ में क्या देखा,
जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले, कहा मेरे लाडले, कहा आचल में
हम सभी बाबा के वैल्यूबल रतन हैं, इसीलिए बाबा हमें चुन चुन कर यज्ञ में लाता है। तो कोई बताए उसके अंदर बाबा ने क्या देखा जिससे वो यज्ञ में बाबा ने सिलेक्शन किया, क्या लिखा बताइए।
आत्मा की अनादि और आदि गुण को देखा। हमारे मुझे आत्मा में इस लास्ट जन्म में भी कोई ऐसा विशेषता होंगी जो परमात्मा जो कर्तव्य करने के लिए आए हैं इस कलयुगी अंत में इस सृष्टि पे। हाँ, अब उस गुण को परमात्मा का देन समझकर कार्यों में लगाना।
वेरी गुड। ऐसे हर कोई रोज, हर दिन, एक ही दिन नहीं, हर दिन अपने आप से पूछो सुबह उठकर, क्योंकि जब हम हर दिन को नया दिन लेते हैं तो तब वो दिन हमें अच्छा लगता है। नहीं तो ज्यादातर देखा गया कि लोगों को डिप्रेशन इसलिए आता है सोमवार को, बाहर वालों को मंडे को बहुत डिप्रेशन रहता है, क्यों आता है, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भी संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग के बीच में होते हैं, क्यों होते हैं, उनको ऐसा लगता फिर वही 5 दिन मुझे काम करना है, वही बोरिंग काम, वही सब चीजें करना है, क्योंकि वो पुरानी स्मृतियों से वो दिन को कनेक्ट करते हैं। पर बाबा ने हमें जो चीज सिखाई है कि हर दिन हमारे लिए नया है, हर दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको सुबह के लिए एक एक्सरसाइज दूंगा कि रोज सुबह उठकर हमें क्या सोचना है। हर दिन हम अपने अंदर ये सोचें कि मैं क्यों आज के दिन मुझे क्या करना है। अभी बंद कर इसको। आज के दिन मुझे क्या करना है, आज के दिन कौन सी नई चीज यज्ञ में ऐड करना है। क्योंकि लीडर का काम होता है, अगर प्रजा बनना है तो फिर कुछ नहीं करें, प्रजा वाला कहेगा ठीक है वही तो रोज करना है। पर जो राजा होगा, किंग होगा, जो लीडर होगा, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को लेकर इनसाइट में परिवर्तन करता है। इंग्लिश में कहते हैं लीडर इज वन हु ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन इंटू इनसाइट। इसका अर्थ है कि लीडर वो है जो नॉलेज को लेकर उसका विजन बनाता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, शिव बाबा ने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि नई दुनिया बनाना है, तो उसने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, यज्ञ का निर्माण किया, विजन बनाया कि आने वाले सालों तक कैसे हमें सेवा करनी है। तो इसी तरह से जब हम रोज उठें तो राजा बनना है तो ये सोचें कि आज के दिन मुझे अपनी प्रजा के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है। क्योंकि अगर मैं राजा हूं तो मेरा कनेक्शन पूरे विश्व की आत्माओं से है, क्लास के स्टूडेंट से ही नहीं है। अगर राजा बनना है तो मेरा जो सोच होगा वो अनलिमिटेड होगा। अगर मेरा सोच केवल क्लास तक ही रहता है, एक सेंटर तक ही रहता है, तो हम गली के राजा बनेंगे, विश्व के राजा नहीं बनेंगे। अगर विश्व के राजा बनना है तो रोज सोचें मुझे मेरे आत्माओं के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, क्या नया करना है। जब हम रोज नई चीज सोचते हैं तो ये कंप्यूटर आत्मा काम करना चालू करती है। अगर इसको हम क्वेश्चन नहीं देते, चैलेंज नहीं देते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी क्या करता है, ठीक है वही रोज करना है, तो वही का वही डल होते जाते हैं, डल होते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर की क्षमता भी खत्म हो जाती है। पर रोज चैलेंज दें इसको, रोज इससे क्वेश्चन पूछें, आज मुझे बाबा के लिए क्या करना है। सुबह उठकर बाबा के सामने खड़े हो जाएं, बाबा मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मुझसे जो करवाना है कर। देखो बाबा आपको कुछ ना कुछ उस दिन काम देगा। बाबा देखता है ये बच्चा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तैयारी नहीं हुआ है, अभी 7:30 बज गए, मुरली का टाइम लेट जा रहे हैं, तो बाबा सोचता अभी नहीं, अभी इसमें किंग की क्वालिटी नहीं आई है, अभी इसको सब्जेक्ट ही रहने दो। पर अगर किंग बनना है तो टाइम पर खड़े होकर, तैयार होकर बाबा से पूछें, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आप मुझे काम दीजिए। तो टेंशन किसको होगा, किसको होगा, बाबा को होगा। नौकरी किसने दी है, हम किसके अंडर काम कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टर कौन है, परमात्मा है, बाबा है। तो टेंशन किसको होगा, अगर हम काम नहीं करेंगे, दिन भर कुछ भी नहीं करेंगे, तो किसका पैसा लॉस होगा, उसका होगा। तो उसको टेंशन ज्यादा होगा, हमें नहीं होगा। पर हम क्या सोचते हैं कि मुझे करना है, मैं ये हूं, तो तब प्रॉब्लम चालू होता है। फिर बाबा कहता अच्छा कर, तू जो है करते रहे, फिर वो मजे करता है, वो रिलैक्स करता है, और हम सब टेंशन में आते हैं। तो रोज सुबह उठकर उसको बोलिए मैं तैयार हूं, आज मेरे से जो काम कराना है तो करा। तो फिर बाबा कुछ न कुछ ऐसी सेवा आपसे कराएगा जो आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जिसका मीनिंग क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, मकसद क्लियर होता है, उसके जीवन में टेंशन नहीं आते। हम सभी ने देखा ब्रह्मा बाप के सामने विजन क्लियर था, तो उसको जितने भी प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स उसको कुछ नहीं लगे। इसी तरह से हमने देखा मिस्टर अब्दुल कलाम को कितने भी प्रॉब्लम आए, विजन क्लियर था, तो वो अल्टीमेटली एम तक पहुंच गया। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है हम अपने डायरी में रोज अपने आप से पूछें मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ है, मुझे क्यों देखा है, और उस विशेषता को बढ़ाइए। हो सकता है कि आपको चांस न मिले, कभी कभी ये भी होता है कि टैलेंट्स हमारे में बहुत रहते हैं पर चांस नहीं मिल रहा है, उसके रीजंस कुछ भी हो तो उसकी भी चिंता न करें, हमारी तैयारी हम रखें। और ज्यादातर मैंने देखा जब आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपका दिल साफ है, क्लीन हार्ट है, सच्ची दिल है, तो आपको चांस मिलेगा ही। मैंने तो मेरे इसमें भी देखा कि ज्यादातर यही होता है, मेरी तैयारी होगी तो मैं क्या कहूंगा, बोल सकता हूं। और अगर उस समय हम डर गए, नहीं नहीं मैं तो तैयारी नहीं, अभी मैं जरा नोट्स देख लूं, तो फेल हो गए। तो इसीलिए बाबा कहता हमेशा अपनी तैयारी 100% रखो कि मैं तैयार हूं, और मौका मिला आपने उस मैच को पूरी तरह खेला। और जब कभी भी मैच खेलने का मौका मिले, कुछ भी मौका मिले, 5 मिनट बोलने का मिले, शुरू में ऐसा ही होगा कि आपको केवल 5 मिनट मिलेंगे कि संस्था का परिचय दो। अब उस संस्था के परिचय को भी आप इतना अच्छा बोलो जो नया हो, ऐसे नहीं बोलो जो सभी बोल रहे हैं 1937 में यह हुआ था, 5 लाख स्टूडेंट हैं, यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। अगर वही का वही बोलेंगे तो हमें वही मिलेगा जो मिलता आया है। लीडर वो होता है जो अपना रास्ता चुनता है, फॉलोअर जो होता है वो दूसरों के रास्ते पे चलता है। 100 लोग वहां गए तो वो भी वहीं जाएगा, तो उसको वही मिलेगा। पर जो राजा बनता है, किंग बनता है, वो अपना रास्ता खुद चुनता है, दे मेक देयर ओन वे। तो लीडर बनना है तो रोज अपने अंदर को पूछें कि मुझे क्या करना है और आज मुझे इसमें क्या जोड़ना है। तो रोज नया नया जोड़ते जाएंगे तो हमारी विशेषता बढ़ती जाएगी। दूसरा, जो काम आपको दिया गया है उसको 100% प्ले करो, चाहे सिंपल काम दिया गया है, छोटा से छोटा काम दिया गया है। मैंने देखा सबसे पहले बाबा क्या कराता है, काम सफाई का, पानी पिलाने का। आपको बोला आपकी बड़ी बहन जी ने कि ये ग्लास पानी का पिलाइए, अब आपका मूड ठीक नहीं है, आप ऐसे ही गए और उसको पानी दे दिया, तो बाबा देख रहा है, बोला अभी नहीं। और वही ग्लास पानी का आपने बहुत अच्छे प्यार से पिलाया तो बाबा कहेगा अब इसका प्रमोशन जरूरी है। तो बाबा ये देखता रहता है कि आप किस कार्य को किस रीति से करते हैं, टेस्ट पेपर लेता है। और जब हम कार्य को अच्छा करते जाते हैं तो उस स्पॉट से बाहर निकलते हैं, कार्य को ठीक नहीं करेंगे तो उसी बर्तन के अंदर पड़े रहेंगे। राजा बनना है तो मैं अपनी विशेषता को इतना अच्छा करूं, हर कार्य को 100% करूं। बाबा भी कहे कि नहीं, ये तो विश्व का महाराजन है, इसको यहां नहीं रख सकते, इसको और कोई प्रमोशन देंगे। तो बाबा खुद ही प्रमोशन देता रहता हैगा अगर हम उस कार्य को अच्छी रीति करते हैं और दिल से साफ होते हैं, 100% रहते हैं। नेक्स्ट वो इसको अलग रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे, तो हरेक के अंदर कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, इसको कहते हैं गैस, जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम, उसको डिटेल नहीं बताता। हर व्यक्ति में संपन्न बनने की शक्ति है, सफल बनने की शक्ति है और महान बनने की शक्ति है, हर आत्मा के अंदर ये है। ये डिपेंड करती है हमारी फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर, मेंटल कैपेसिटी के ऊपर, इमोशनल कैपेसिटी के ऊपर, स्पिरिचुअल कैपेसिटी के ऊपर, इकोनॉमिक कैपेसिटी के ऊपर और सोशल कैपेसिटी के ऊपर। ये सब कैपेसिटी से हमारी सफलता डिपेंड करती है। पर हमारे अंदर ये तीनों चीजें हैं, अब इसको कैसे बढ़ाना है वो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट, लाइफ एक्चुअली क्या है, 10% एक्चुअली कुछ होता है, 90% क्या है लाइफ, 10% एक्चुअली होता है और 90% हम उस सिचुएशन को कैसे उत्तर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। 10% एक्चुअली कुछ होता है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ बीमारी आई, ये 10% में, जिसका हमारा कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। पर 90% क्या है, हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए कहते हैं तनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप उस तनाव को, उस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज योर एटीट्यूड, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, वो आपके ऊपर है। यानी आप उस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करते वो आपके हाथ में है। तो 90% क्या है, हमारे हाथ में है, और 10% क्या है, हमारे हाथ में नहीं है। तो उसकी चिंता ना करें, पर ये 90% को तो हम ठीक करें, क्योंकि तनाव बड़ी चीजों से नहीं आता है। ज्यादातर ये देखा समर्पित भाई बहनों का प्रॉब्लम बड़ी चीजों से नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो सेंटर पर होती है, वहीं जो चार पांच लोग जो रहते हैं उन्हीं के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर, वही निराशा में लाता है। तो है छोटी चीज, पर हमने उसको सीरियस बना लिया, इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। अब प्रॉब्लम क्यों आते हैं, क्योंकि हम जिंदा है। अगर हम कहें कि हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो फिर कहां जाकर सो जाएं, शमशान में जाके सो जाएं कि प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आना यानी मैं जिंदा हूं, इसीलिए माया आएगी। माया देखती है तो खत्म हो गया, फिर वो आएगी नहीं। तो सोच लो, अगर हमें शमशान में जाके सोना है तो फिर माया नहीं आएगी, पर अगर हमें चैलेंजेस लेना है तो आएगी, कोई बात नहीं। दूसरा प्रॉब्लम इसलिए आते, कुछ हम खुद क्रिएट करते हैं अपने आप। कईयों को अच्छा लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो उसी में रहना पसंद करते हैं। और उनको टेंशन कब आता है, जब उनके पास प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यूनियन लीडर होता है, यूनियन लीडर को कब प्रॉब्लम आता है, उसका ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, जब हड़ताल नहीं है। जब हड़ताल है तो यूनियन लीडर का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जिंदाबाद उसके मुंह से नहीं निकल रहा है तो उसको डिप्रेशन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम इसलिए आते, कई खुद क्रिएट करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि अहंकार, बाबा ने जो कहा मैं और मेरा, जब हम किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, मैं यानी अटैच हो जाते हैं कि ये मेरी वस्तु है, मेरा सेंटर है, ये मेरा ही स्टूडेंट है, जब ये बोलने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम चालू होगा, उसका कोई सलूशन नहीं है, आपको डिटैच होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा माया का घुसने का रास्ता है मैं और मेरा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पहली चीज हमें सरेंडर करना है यहां, कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है एक कदम उठाना, बाकी काम उसका है। इसीलिए अंगद की कहानी सुनाई ना, अंगद क्या हुआ, अंगद गया, उसने पांव रख दिया और उसने कहा जो पांव को हिला देगा, अगर पांव हिल गया तो सीता आपकी। सबने बहुत कोशिश की, कोई पांव हिला नहीं पाया। फिर जब अंगद वापस गया अपने दोस्तों के पास, तो उसके दोस्तों ने कहा अरे अंगद, आज तो हमें टेंशन हो गया था, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता तो उनकी थी। तो अंगद ने कहा मैंने, मेरे को क्यों टेंशन होता, मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले राम का टेंशन था, सीता राम की थी मेरी थोड़ी थी। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, रोज एक पांव रखना, बाकी बाबा धक्का लगाएगा। आपको जब चैलेंज मिले आज भाषण करना है 5 मिनट, आपके टीचर बहन ने कहा ले लो, और फिर बाबा को बोलो बाबा मेरे को तो आता नहीं, तू ही बुलवा। मैंने देखा बाबा आ जाता है, बाबा उस आत्मा से बुलवाता है। मैंने तो इतनी बहनों के अनुभव सुने कि वो बहन को कुछ नहीं था, कुछ बोल नहीं सकती थी, पर जैसे ही उसने हिम्मत करी और वो बोलने लग गई। और बाबा का काम रहता है कि उससे कैसे काम कराना, पर एक कदम हमें लेना पड़ता है। एक कदम भी नहीं ले तो फिर बाबा कहता नहीं, वहीं का वहीं रुकते रहे। अब ये थोड़ा पर्सनालिटी के ऊपर है कि कैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो हमारे संस्कार बचपन से बनते हैं, हर आदमी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी बना लेता है। दो चीजें ही रहती है, दर्द और खुशी। हर आदमी अपने दर्द को भूलना चाहता है और खुशी को प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी जीवन में क्या चाहता है, उसको अटेंशन मिले। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, अगर माँ अटेंशन नहीं दे रही है तो क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, माँ उसको ध्यान नहीं दे रही है तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा। फिर भी माँ ध्यान नहीं दे रही है तो फिर क्या करेगा, कुछ और कुछ करेगा, कुछ गिरा देगा। तो वो क्या चाहता है बच्चा, अटेंशन चाहता है। ज्यादातर व्यक्तियों की पर्सनालिटी इसी पे डिपेंड हो जाती है। अगर वो बचपन को नहीं भूल पाता तो उस बड़े होने के बाद भी वो क्या चाहता है, उसको अटेंशन मिले। टोटल साइकोलॉजी इसके ऊपर आती है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। हम जीवन में जो भी करते हैं वो अटेंशन खिंचवाने के लिए करते हैं। अटेंशन नहीं मिलता है तो फिर क्या हो जाता है, डिप्रेशन आना चालू होता है। आपने बहुत अच्छी सेवा करके आए और आपकी सीनियर ने आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया, आपके अंदर से इच्छा हो रही है वो पूछे और मैं बोलूं, पर वो पूछ नहीं रही है, क्या करें। और चाहिए अटेंशन, बाबा ने भी जो मेथड खेली है अटेंशन से ही खेली है। सबको बाबा अटेंशन देता है। देखो जब बाबा आता है इधर देगा उधर देगा, पीछे वाले को देगा, जो नहीं है उनको भी अटेंशन देगा, सबको देता है। बाबा का भी मोटिवेशन क्या है, अटेंशन देता है। अब अगर अटेंशन नहीं मिले तो क्या करें, और चाहिए। ज्यादातर डिप्रेशन इसी से आते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अटेंशन नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम। यहां बैठे हुए हैं, बाबा आया हुआ है, बाबा टोली दे रहा है और हम बैठ के सोच रहे हैं, अरे मैं भी जाता तो कितना अच्छा होता, टोली मिल जाए तो कितना अच्छा, बाबा की दृष्टि दिला दो। मेजर हम लोगों को बाहर वाले कहते हैं हमें एक बार स्टेज पे चढ़ा दो, एक बार दृष्टि मिल जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी भी मैं अंदर से शक्तिशाली नहीं हुई हूं, अभी भी मुझे अटेंशन चाहिए। जबकि बाबा अटेंशन मुरलियों के द्वारा दे देता है, वहां जाना और ना जाना वो रोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा हमें अटेंशन देता है। अगर आपको कोई अटेंशन ना दे तो क्या करें, और शक्तिशाली बनना है। आने वाला समय वही मैच जीतेगा जो माइंड से स्ट्रांग होगा, जो मन से शक्तिशाली होगा वही मैच को जीतेगा। अब अटेंशन के ऊपर हम डिपेंड हो गए तो क्या होगा, अटेंशन मिला, किसी ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो तो खुशी हुई, बहुत अच्छा लेक्चर दिया और खुशी हुई, आपकी क्लास तो बहुत अच्छी है, चढ़ गए। और किसी ने नहीं बोला आपको, डाउन। सबसे बड़ी बीमारी जो सरेंडर होने के बाद आती है वाह वाह की। एक साधु महात्मा थे, वो जंगल में रहते थे, लोग जाते थे उनको खाना खिलाने देने जाते थे और कहते थे वाह साधु महाराज आपका तेज कितना अच्छा है, और खाना देते थे। तो धीरे एक बार उसके एक चेले ने उन लोगों को कहा, अगर आप देखना चाहते हो साधु महाराज कितने ऊंचे पहुंचे हुए हैं तो आप कल से खाना लाना और खाना देना और कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बैठे रहना। तो गांव वालों ने दूसरे दिन से क्या किया, खाना ले गए, देने लग गए और कुछ नहीं बोले, वाह वाह कुछ नहीं बोले, चुपचाप। तीन चार दिन हो गए, अब ये स्वामी जी को टेंशन होने लग गया। अभी तक तो ये लोग वाह वाह करते थे, अब ये दे रहे हैं तो उसको वो खाना भी मजा नहीं आने लग गया और धीरे धीरे उसको डिप्रेशन में चला गया। तो कभी भी हम वाह वाह के ऊपर भी डिपेंड ना हो जाएं। वाह वाह से भी अटैचमेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हार हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने जब जो पार्ट जैसा दिया है, लेक्चर देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो आप अपने आप को एंजॉय करो। यज्ञ में वही सरवाइव करेगा जो अपने आप से जीना सीख गया है, जो अपने आप में रहना सीख गया है, अपनी मोल अपनी मग्न अवस्था में सीख गया है, वो सरवाइव करेगा। उसको इन चीजों का इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो जैसे ही आपको मौका नहीं मिला, क्लास नहीं मिली तो डिप्रेशन में चले गए। तो ये हम अटेंशन के ऊपर डिपेंड ना करें, हम खुद को अटेंशन दें, बाबा से अटेंशन दें। इसीलिए मैं आजकल यही कहता हूं बाहर वालों को भी, आपको भी, खुद को भी, रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी डे। आप रोज रात को अपनी पीठ थपथपाइए, अभी भी थपथपाइए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई है नहीं दुनिया में, मेरे जैसा अच्छा पार्ट किसी का नहीं। हाँ, एक दूसरे के भी थपथपा सकते हैं, वेरी गुड। टीम का अर्थ ही होता है दूसरे की पीठ थपथपा के उसको आगे बढ़ना। लीडर, सबसे अच्छा लीडर कौन होता है, जो खुद बैठा रहता है और लोगों को आगे बढ़ाता है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बैठा और दूसरों को आगे बढ़ाया, तो रोज रात को अपनी पीठ थपथपाइए, कोई बोले ना बोले, टीचर ने बोला नहीं बोला कोई बात नहीं, हम तो थपथपा सकते हैं कि मैंने आज का पाठ अच्छा किया। नेक्स्ट। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे में नहीं रहता है
वो हम दूसरों में देखना चाहते हैं। जो मेरे में नहीं है मैं क्या चाहता हूँ, दूसरे में देखना चाहता हूँ। और ज्यादातर पर्सनालिटी इसी से बनती है, जो मेरे में नहीं है मैं दूसरों में देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इसका काफी विस्तार है इसको। और इसी से डिप्रेशन चालू होता है कि मैं इधर क्यों पैदा हुआ, मेरे को ये फैमिली क्यों मिली, ये सेंटर क्यों मिला, ये टीचर क्यों मिली। ये सब अगर सोचने लग गए तो ज्यादातर जो डिप्रेशन के कारण होते हैं इमेजिनरी होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। खाली 7% फिक्स होते हैं और 3% को हम चेंज कर सकते हैं। 10% रियल हैं और 90% रियल नहीं है। और ज्यादातर क्या होता है, इसी में लोगों को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आती, मेरा कलर ऐसा है, मेरी साइज ऐसी है, मेरी हाइट ऐसी है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो उसी से इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो इन सब से हम डरे नहीं, क्योंकि ये सब मन की उपज है। केवल जो हमारे हाथ में उनको हम देखें। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे अंदर डिप्रेशन का स्केल कितना है। अभी सब क्वेश्चन अपने अंदर करते जाना, लिखना नहीं क्वेश्चन, खाली आंसर करना, अपनी लेवल चेक करना। आप फील करते हैं कि आप अपने जीवन में बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहे हैं, आप किसी भी कार्य की, आपको किसी भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। ए, इसमें तीन तीन उत्तर हैं, आपके ऊपर जो उत्तर लागू हो वो लिखना, ए बी सी बस। पहला ए, मैं ऐसा फील नहीं करता हूं, मैं सोचता हूं मैं ठीक हूं। बी, मैं जब दूसरों को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं सफल नहीं हूं। सी, मैं हमेशा ही फील करता हूं कि मैं सफल नहीं हूं, असफल हूं। तो जो लागू होए वो आप लिखते जाओ, ए बी सी। पॉइंट्स बाद में बताऊंगा, ए को कितना, बी को कितना, सी को। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि मैं जीवन में फील करता हूं कि मैं जीवन में बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुआ हूं और मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ए में है ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। बी है, जब मैं दूसरों को देखता हूं तो ऐसा लगता है मेरा कम है। और सी यानी बिल्कुल ही मैं अनसक्सेसफुल हूं। सेकंड क्वेश्चन, मैं सोचता हूं कि जीवन में जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। ए, ऐसा मैं नहीं सोचता। बी, मैं कभी कभी अपनी कमजोरियों को सोचता हूं और सोचता हूं कि मैं ही अपनी कमजोरियों का जिम्मेवार हूं। सी, मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में जो हो रहा है मेरे द्वारा ही, मेरी कमजोरियों के द्वारा हो रहा है। ए बी सी, ए तब लगाना है जब मेरे ऊपर लागू नहीं होता, बी है बीच का और सी है बिल्कुल लागू होता है ये। नेक्स्ट, मैं अपने आप से घृणा करता हूं, हेट करता हूं। ए, ऐसा नहीं करता हूं। बी, मैं खुश नहीं हूं अपने आप से पर अपने आप से घृणा नहीं करता हूं। और तीसरा है, मैं अपने आप से घृणा करता हूं, हेट करता हूं। सी, सी है वर्स्ट, ए है ठीक। ऐसे मत करना, जो रियल है वो ही लिखना, यहां मैं पॉइंट्स नहीं पूछूंगा, आपको अपना एनालिसिस अपने आप ही करना है। अगर लेवल से पता लगेगा कि डिप्रेशन है कि नहीं है। चौथा, मैं कभी कभी छोटी बातों पर रोता हूं और अच्छे समय पर भी मैं रोता हूं। छोटी छोटी चीजों पे तो रोता ही हूं और अच्छे समय पर भी रोना आता है कईयों को, ऐसा नहीं होता है। ए, बी, मैं दूसरे लोगों से ज्यादा रोता हूं। सी, मैं हमेशा ही रोता रहता हूं। सी, नेक्स्ट, मैं अपने आप जीवन के डिसीशन ले सकता हूं या मैं डिसीशन लेने में मुझे डर लगता है। कौन बताए जिसको डिसीशन लेने में डर नहीं लगता है, लाइफ का डिसीशन ले सकता हूं। ठीक है, मैं डरता नहीं हूं। ए, बी, मैं दूसरों के मुकाबले मुझे डिसीशन लेने में टाइम लगता है। सी, मुझे बहुत डिफिकल्टी लगती है डिसीशन लेने में। वो लोग क्या करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, ऐसा करूं क्या, ऐसा करूं क्या, जैसे कई रहते हैं ना कि मैं ये लाइफ में इंजीनियर बनूं क्या, फिर दूसरे से पूछेंगे सरेंडर हो जाऊं क्या, सरेंडर हो जाऊं क्या, तो वो 10 लोगों से ओपिनियन लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। 6, मैंने अब दूसरे लोगों से बात करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आता है, दूसरे लोगों से मिक्स होना अच्छा नहीं लगता। पहला, मुझे अच्छा लगता है सबसे बात करना। 2, मैंने इंटरेस्ट दूसरों में खो दिया है और थोड़ा जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन आता है। 3, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है लोगों से मिलना, मैं चुपचाप अपने आप अकेले बैठ जाता हूं, जैसे ही टीचर बनने का कोर्स कराओ, नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो ये लिविंग लोनली ऑल्सो इज ए साइन ऑफ डिप्रेशन। 7, कभी कभी मुझे आता है कि ये जिंदगी खराब है, मैं इसको खत्म कर दूं। ए, ऐसा नहीं लगता है। 2, कुछ समय ऐसा लगता है। 3, ऐसा लगता ही है कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपने को खत्म कर दूं। 8, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब काम करता हूं दिन भर तो थकान जल्दी आ जाती है और मैं जल्दी थक जाता हूं, ऐसा नहीं लगता है। ए, खाली बहुत बड़ा काम करने से ही थकान होती है। 2, मैं किसी भी कार्य करने के बाद मुझे थकान हो जाती है। 3, मैं हमेशा ही मुझे थकान लगती रहती, काम भी नहीं कर रहा हूं फिर भी थकान लग रही है। 9, मैं जब रात को सोता हूं तो मुझे चिंता लगती है और मुझे सोने में तकलीफ होती है। जब रात को सोने गए, चिंता लगती है और सोने में तकलीफ होती है। 1, मुझे नींद ठीक आती है। 2, मुझे सम कभी कभी ऐसा होता है। और 3, हमेशा ही मेरी नींद डिस्टर्ब रहती है। 10, मैं कभी भी जब भाषण करना है, कोर्स कराना है, तो नर्वस हो जाता हूं। 1, नहीं होता हूं, मैं कॉन्फिडेंट होता हूं। 2, कभी कभी ऐसा लगता है। और 3, हमेशा ही नर्वस हो जाता हूं। अब जिन्होंने ए लिखा है वो 1 नंबर दे, बी जहां लिखा है 2, और सी जहां लिखा है 3, और टोटल नंबर करना कितना स्कोर आता है। अगर आपका नंबर 16 है, 16 से कम है तो ठीक है, अगर 16 से ज्यादा आपका नंबर आ रहा है, 26, 30, तो डिप्रेशन है। 21 से 25 में भी कहीं ना कहीं बीच का डिप्रेशन है। 16 और 16 से कम है तो इसका मतलब मेरा लेवल ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने आप करना, मैं इसको एनालाइज नहीं करूंगा, उसमें बहुत टाइम चाहिए एक एक के साथ, तो वो आप अपना एनालिसिस खुद करना। डिप्रेशन का अर्थ ही होता है सब चीजें अपने अंदर दबाते जाना, जिंदगी की लड़ाई से भागना, अपनी शक्ति को भी दबा देना, सप्रेस कर देना, नहीं मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं तो ठीक हूं ही नहीं, मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति अपने आप से जो हार जाते हैं, सोचते बहुत हैं पर प्रैक्टिकली वो कर नहीं पाते, सोचेंगे बहुत पर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उनमें डिप्रेशन चालू हो जाता है। जैसे ही क्योंकि निराशा आती है, शरीर के केमिकल्स चेंज होने लगते हैं, ब्रेन के केमिकल्स चेंज होते हैं, उनका सिक्रीशन कम हो जाता है और उसके कारण शरीर के ऊपर असर होता है। और ये देखा कि जो लोग डिप्रेस ज्यादा रहते हैं उनमें बीमारियों के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए जैसे ही मूड ऑफ होने लग जाए उस समय कुछ ना कुछ ऐसी चीज करो जो आपका मूड सेट कर दे, जैसे अच्छे गीत हैं उस समय गीत सुनने लग जाओ, दूसरा कार्य करने लग जाओ, अलमारी साफ करने लग जाओ, कुछ ना कुछ अपने से बातें करने लग जाओ, उसको ज्यादा देर तक अपने अंदर मत रखो। तो ये है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अपने कॉम्प्लीमेंट्स, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे तो उसको एक्सेप्ट करो, कोई आपको कहे बहुत अच्छा कराया, बोलिए थैंक यू। ऐसा मत बोलो कि मेरे को तो आता ही नहीं फिर भी बोल दिया, ऐसा नहीं बोलो। जब कभी भी जाओ कॉन्फिडेंस से जाओ, और कभी भी लेक्चर ऐसे मत चालू करो मुझे तो पता नहीं था फिर भी मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं फिर भी ये दे रहा हूं। कभी भी पब्लिक के सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से चालू ना करना, हमेशा पॉजिटिव मैदान में उतरना है, 100% उतरना है। अपने आप से अच्छी तरह से बात करिए, आपके दोस्त अच्छे फ्रेंड्स रखिए, अपने आप को भी अच्छी तरह से ट्रीट करिए। ये हो जाती है हमारी कंडीशनिंग। कैसे हो जाती है? जैसे ये फ्लीज हैं, फ्लीज को एक डब्बे में बंद कर दिया, ग्लास में, और ऊपर से कवर कर दिया, तो फ्लीज क्या करती हैं? जंप मारती हैं। शुरू में फ्लीज क्या करेंगी? इंसेक्ट, फ्ली यानी एक कीड़ा रहता है, तो वो क्या करता है, जंप, मक्खी, वो जंप मारती है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और ऊपर ये ग्लास कवर है तो उसको हिट करेगी, रूफ को हिट करती जाएगी। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, फ्लीज यहां तक जंप मारेगी, पूरा नहीं जाएगी, इतना ही जाएगी, वापस आ जाएगी। अब थोड़ी देर बाद अगर हम उसके ढक्कन को हटा दें तो फ्लीज वहीं की वहीं रहेगी, ऊपर आ सकती है, पर फ्लीज कहां तक जंप मारेगी, यहां तक ही जाएगी, वापस आ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? वो क्या सोच रही है, फ्लीज ढक्कन अभी लगा हुआ है, मैं बाहर नहीं भाग सकती। तो ज्यादातर क्या होता है, व्यक्ति भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार अपनी लिमिटेशन बना लेता, मैं इतना ही कर सकता, इससे ज्यादा नहीं। वो अपने आप हमेशा अपने ऊपर ढक्कन महसूस करता है। पर लीडर बनना है तो अपने ऊपर के ढक्कन को निकालकर जीवन में खोदना पड़ता है। कभी भी अपने लाइफ में कंडीशनिंग नहीं करना है, कंडीशनिंग को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, तो हमेशा पहला एक प्रिंसिपल को लेकर अब छोड़ देंगे कि पहली चीज लाइफ में हमें जो बाबा ने सिखाई है कि मेरा जो पार्ट है मैं अपने को एक्सेप्ट करूं। आपसे पूछे कोई आप कैसे हो तो हमेशा क्या कहें, आई एम ओके। ऐसा नहीं कहो कि मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं हो, मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक हो, ये चार तरह के एनालिसिस रहते हैं। एक कहता है मैं ठीक हूं आप ठीक हैं सब ठीक है, ये है पॉजिटिव। एक होता है कहता है मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक हो, ये होता है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा, तीसरा होता है मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं हो, ये होता है सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स। और चौथा होता है बिल्कुल जो क्रिमिनल बनता है, वो कहता है मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज ओके। तो हमें ऐसा नहीं बनना, हमें क्या बनना है, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। मैं जिस सेंटर पे हूं बहुत अच्छा है, मेरी टीचर बहन बहुत अच्छी है, मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं, मुझे इसी में से ही आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं मैं ठीक नहीं हूं आप ठीक नहीं है, फिर भी ठीक है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोगों के लिए आइसक्रीम आ गई, इसलिए आप लोगों का स्ट्रेस और नहीं बढ़ाते, यही खत्म करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर तो बहुत बड़े बड़े हैं। मेन मुद्दा आपको यही सीखना है कि हमारे ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है, और जो कलाएं परमात्मा ने हमें दी है उसको यज्ञ में स्वाह करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो भी सीन आए उनसे घबराना नहीं है, आएंगे, सीन का काम है आना और मेरा काम है मुकाबला करना, और उस सीन को दूर करेंगे तो बाबा हमें फिर नया मैच खेलने को देगा।